كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. سورة النور کی تفسیر ہم اب واپس معروف القرآن والیوم نمبر 6 سے پڑھ رہے ہیں, تو اس میں پیج نمبر 399 تک ہم نے کل پڑھ لیا تھا. کچھ سوالوں کے جواب بھی آخر میں دے رہے تھے, دینے کی کوشش کری تھی. اگر مزید کوئی سوال ہوں تو آپ بیچ میں لکھ کے پوچھ لیجیے گا. اب صفحہ نمبر 400 والیوم 6, اگر کوئی پیج نمبر لکھ بھی دے یہاں پہ چیٹ بند ہو گئے تو بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس میں بے ریش لڑکوں کی طرف قصداً نظر کرنا بھی اسی حکم میں ہے. بے ریش, ریش کا مطلب ہوتا ہے داڑھی, لحیہ ریش کو یا داڑھی کو عربی میں کہتے ہیں. تو جن لڑکوں کی داڑھی نہیں نکلی ہوتی ہے, یعنی عمر میں کم ہوتے ہیں یا بڑے ہو جاتے ہیں لیکن شیو کرنے کا ان کو شوق ہوتا ہے, تو ایسے جو شکلیں ہوتی ہیں تو ہمارے دین کے اندر ایسی شکلوں کو عورت سے مشابہت دی گئی ہے. تو جس طریقے سے عورت کی طرف نظر رکھ کر کے جو ایک شخص جس کی شہوت جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, یعنی شہوت کنٹرول میں کس کے ہوتی ہے کہ جس نے اس کو شریعت کے دائرے میں رکھنے کے لیے محنت کری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جس نے محنت نہیں کری ہوتی, which is unfortunately اس دور زمانے کے اندر بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جن کی شہوت جو ہوتی ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہوتی, شریعت کے دائرے میں نہیں ہوتی. خدا کا خوف, خشیت الہی, محبت الہی, یہ چیزیں ہوتی ہیں نا جو کہ انسان کی نگاہوں کو کنٹرول رکھتی ہیں, لیکن ایسی چیزیں تو بڑی مفقود ہیں, بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو پھر ایسے لوگ جو ہیں ان کی طبیعت کے اندر میلان جو ہے وہ عورتوں کو دیکھ کر کے بھی ہوتا ہے, اور کچھ ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ جو ہے وہ پھر مردوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے, اور یہ ریئل کیسز ہیں, ایوری ون نوز اباؤٹ اٹ. انفارچونیٹلی صرف ویسٹ کے اندر تو یہ باقاعدہ ایک ہیوج فینومنا ہے, جس کو کہ یعنی گیز کا یا ہوموسیکشوالٹی کا فینومنا کہا جاتا ہے. یہ تو وہاں پر اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ باقاعدہ ان کے کانگریس میں, ان کے جو لیجسلیشن اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر مرد کی مرد سے شادی کا قانون پاس کر دیا گیا ہے کہ جی یہ اب جائز ہے. اور وہاں پر یعنی پیریڈز ہوتی ہیں, گے پیریڈز ان کو کہتے ہیں, باقاعدہ یعنی سڑکوں کے اوپر نکل کر کے وہ اپنا گے ہونے کا اظہار کرتے ہیں. لیکن ویسٹرن معاشرے کے علاوہ بھی یہ ایون ایسٹرن معاشرے کے اندر بھی بہت ہے, اور یعنی انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایون پاکستان جیسے معاشرے کے اندر جو بڑا مذہبی معاشرہ کہلاتا ہے, تو وہاں پر بھی یہ چیز بہت یعنی پریولنٹ ہے انفارچونیٹلی. تو اور یہ چیز جو ہے وہ اس کا تعلق یعنی شہوت کے مرض کے ساتھ ہی ہے. تو یہ چونکہ اس دور کے اندر یہ کثرت سے پھیل گئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر کثرت وائڈ سپریڈ ہو گئی ہے, لیکن پچھلے دور کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی, ٹھیک ہے, اب کثرت ہو گئی ہے, پہلے کثرت نہیں تھی, ٹھیک ہے, لیکن موجود کی پہلے بھی تھی. اس وجہ سے جو فقہا ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کے مسئلے لکھے ہیں. تو اسی کو یعنی امرد بھی کہا جاتا ہے, وہ جو چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں, اور بے ریش بھی کہا جاتا ہے. تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بہت سے اسلاف امت کسی امرد یعنی بے ریش لڑکے کی طرف دیکھتے رہنے سے بھی بڑی سختی کے ساتھ منع فرماتے تھے, اور بہت سے علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے. غالباً یہ اس صورت میں ہے کہ جبکہ بری نیت اور نفس کی خواہش کے ساتھ نظر کی جائے, واللہ عالم. تو یہ تو کومنٹ پرنٹر نے یا پبلشر نے لکھا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ بری نیت کے ساتھ دیکھنے ہی سے منع کیا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر بری نیت شروع میں نہ بھی ہو, لیکن دیکھیں ہمارا دین جو ہے نا اس کے اندر بڑی ڈیفیشنسیز ہو گئی ہیں. ہم نے بہت ساری چیزیں نا اس کے اندر سے بڑی ایسنشیل تھیں جو کہ ہم نے نکال دی ہیں یا ان کی امپورٹنس کو کم کر دیا ہے, لیکن ہمارے جو اسلاف تھے ان کے ہاں ان چیزوں کی امپورٹنس کم نہیں تھی, ना उन्होंने इन चीजों को दीन से निकाला था। तो हमारे दीन के अंदर एक बड़ा एसेंशियल कॉन्सेप्ट है जो कि हमें कुरान बिल्कुल शुरू से देना शुरू कर देता है और आखिर तक देता चला आता है, और वो क्या है? शैतान का तसव्वुर, ठीक है, शैतान की मौजूदगी, शैतान का अमल दखल। तो शैतान एक ऐसी चीज है कि जो कि हमारे मामलात के अंदर दखल अंदाजी करता है, हमारी सोचों के अंदर दखल अंदाजी करता है, हमारी नीयतों को खराब करता है, ठीक है। तो ये एक एग्जिस्टेंस, ये एक यानी परमानेंट एग्जिस्टेंस है कि जिसका कि हमें एहसास नहीं होता कि जी शैतान लगा हुआ है हमारे पीछे, लेकिन हमारे असलाफ को इसका एहसास रहता था। तो इस वजह से जहां भी वो कोई ऐसा मौका देखते थे कि जहां पर शैतान को मौका मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, तो वहां पर ना एहतियात बरतते भी थे, खुद भी एहतियात बरतते थे और एहतियात की तरगीब भी देते थे कि भाई इस तरह की चीज को देखने से शैतान को मौका मिलेगा कि तुम्हें तुम्हारे अंदर जो है वो नेगेटिव जज्बात जो है वो उकसाएगा, बढ़ाएगा। तो इस वजह से उसको हराम लिखा, हराम करार दिया कि मुस्तकिल देखते रहना, ठीक है। तो देखते रहना, मुस्तकिल का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया बल्कि देखते रहने से मना किया, क्योंकि शैतान की से अपने आप को गैर महफूज समझते थे। आज हम शैतान से अपने आप को गैर महफूज नहीं समझते, इस वजह से हम जो है कहते हैं कोई मसला ही नहीं है, मैं तो बड़ा नेक हूं और मेरी तो नगर नजर बुरी हो ही नहीं सकती और मैं मेरे अंदर तो बुरे जज्बात आ ही नहीं सकते। लेकिन ये हमारी खाम ख्याली है, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। जब भी हम उसूलों के खिलाफ बात करते हैं तो फिर शैतान को हमारे ऊपर दस्त दराजी का मौका मिल जाता है। ये उसूल हर जगह अप्लाई होता है, सिर्फ यहाँ पर नजर करने की के मामले में अप्लाई नहीं होता। तो हमें हर जगह इस बात का ख्याल रखना चाहिए। गैर महरम की तरफ नजर करना हराम है, इसकी तफसील। وقل للمؤمنين يغضضن من ابصارهن قل وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن الآية, یعنی اس آیت کے آخر تک۔ اس طویل آیت کے ابتدائی حصے میں تو وہی حکم ہے جو اس سے پہلی آیت میں مردوں کو دیا گیا کہ اپنی نظریں پست رکھیں, یعنی نگاہ پھیر لیں, ٹھیک ہے۔ مردوں کا تو کوئی غیر محرم نہیں ہوتا نا, یعنی ایون امرد جو ہے وہ مردوں کے لیے غیر محرم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کہ اس کو دیکھنا جو ہے وہ ناجائز ہو جائے, لیکن عورتوں, یہ غیر محرم کی تعریف جو ہے یہ عورتوں کے اوپر اپلائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے۔ تو ایکچولی مردوں کے لیے, مردوں میں کوئی غیر محرم نہیں ہوتا, عورتیں تو ظاہر ان کے لیے غیر محرم ہوتی ہیں, ان کی طرف نگاہ روکنے سے تو منع کر, نگاہ کرنے سے تو منع کر دیا پچھلی آیت کے اندر۔ تو یہاں پر پھر عورتوں کا کی ہی پارٹ کا تذکرہ ہے کہ اپنی نظریں پست رکھیں یعنی نگاہ پھیر لیں۔ مردوں کے حکم میں عورتوں میں داخل تھیں مگر ان کا ذکر علیحدہ تاکید کے لیے کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر نا انہوں نے دو طرح سے ڈیوائیڈ کیا ہے اس دیکھنے والے حکم کو عورتوں کے لیے۔ ایک ہے کہ یعنی غیر محرم مرد کو دیکھنا مطلقاً حرام, یہ ایک اوپینین ہے, ٹھیک ہے, ہر کنڈیشن میں غیر محرم مرد کو دیکھنا حرام ہے عورتوں کے لیے, ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اوپینین جو اسکالرس کا ہے وہ ہے کہ غیر محرم مرد کو دیکھنا حرام ہے لیکن قید کے ساتھ, یعنی ایک ریسٹرکشن کے ساتھ۔ اگر یہ ریسٹرکشن اپلائی ہو رہی ہے, یہ کنڈیشن اپلائی ہو رہی ہے, تو پھر دیکھنا حرام ہوگا, اور اگر یہ کنڈیشن اپلائی نہیں ہو رہی ہے تو دیکھنا حرام نہیں ہوگا, ٹھیک ہے۔ تو یہ دو اوپینینز ہیں۔ پہلا اوپینین یہ ہے کہ مطلقاً انکنڈیشنل حرام ہے, ہر صورت میں حرام ہے۔ تو اس کا تفصیل یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو اپنے محارم کے سوا کسی مرد کو دیکھنا حرام ہے۔ بہت سے علماء کا قول یہ ہے کہ غیر محرم مرد کو دیکھنا عورت کے لیے مطلقاً حرام ہے۔ یہ لفظ مطلقاً جو ہے وہ بہت زیادہ ٹریڈیشنل بکس کے اندر استعمال ہوتا ہے, تو اس کی ترجمہ جو آپ کے سامنے کیا نا کہ انکنڈیشنل, انڈر آل سرکمسٹانسز, ہر حال میں, اردو میں کہیں گے ہر حال میں, ٹھیک ہے۔ تو اس کو لکھ لیجیے اپنے پاس تاکہ انشاءاللہ آگے بھی یاد رہے۔ خواہ شہوت اور بری نیت سے دیکھے یا بغیر کسی نیت اور شہوت کے, دونوں صورتیں حرام ہیں۔ اور اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جس میں مذکور ہے کہ ایک روز ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں, اچانک عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی آ گئے, اور یہ واقعہ احکام حجاب نازل ہونے کے بعد پیش آیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو حکم دیا کہ ان سے پردہ کرو۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو نابینا ہے, نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو نابینا نہیں ہو, تم تو ان کو دیکھ رہی ہو۔ रवाहु अबू दाऊद व तिरमिजी व काल तिरमिजी, हदीस हसन सही, यानी सही भी है हसन भी है, यानी बहुत ऑथेंटिक दर्जे की हदीस है। ठीक है, तो हदीस की ऑथेंटिसिटी के अंदर कोई वो नहीं है कि पता नहीं ये हुआ था कि नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस हदीस से फिर फुकहा ने ये दलील पकड़ी, या ये यानी ये प्रूफ किया कि मुतलकन देखना हराम है कि ये जो खवातीन थी ये नबी अलैहिस्सलाम की अजवाज थी। ठीक है, और नबी अलैहिस्सलाम के साथ बैठी हुई थी। ठीक है, यानी बेहतरीन सोहबत में थी और बेहतरीन इनकी हैसियत थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इनको भी वहां से पर्दा करने का फरमा दिया। ठीक है, और वो जो सहाबी थे उनका तो देखने का इहतमाल ही नहीं था, इसलिए कि वो नाबीना थे कि वो तो इनको देख नहीं सकते थे। तो इस वजह से ना फुकहा ने फरमाया कि मुतलकन ये इट डज नॉट मैटर कि जी आप शहवत के साथ देख रहे हैं कि आप शहवत के साथ नहीं देख रहे हैं, बिकॉज ये खवातीन जो हैं इनके बारे में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में होने के की वजह से और भी ज्यादा इसकी कंफर्मेशन हो जाती है कि ये तो अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को शहवत के साथ देख ही नहीं सकती ना, यानी एहतमाल ही तकरीबन खत्म हो गया इसका। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, फिर इसके बाद इसके बारे में थोड़ी अल्लाह की तौफीक से बात करेंगे। फरमाया कि दूसरे फुकहा ने कहा कि बगैर शहवत के गैर मर्द को देखने में औरत के लिए मुजायका नहीं है। ठीक है, तो ये फिर इसको कहते हैं मुतलकन नहीं, बल्कि इसको कहेंगे मुकय्यद, यानी विद कंडीशंस। तो अगर ये कंडीशन शहवत वाली पूरी नहीं हो रही हो कि शहवत के साथ देख रही है, अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही हो तो फिर देखना जायज है। ठीक है, यानी इन अदर वर्ड्स कि अगर शहवत वाली कंडीशन पूरी हो रही हो तो देखना हराम है। ठीक है, शहवत के साथ देखना हराम है, तो ये कंडीशन हो गया, और इसको यानी इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो मुकय्यद, यानी मुतलक का ऑपोजिट क्या होता है, मुकय्यद, कैद के साथ। इनका इस्तदलाल सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की इस हदीस से है कि जिसमें मजकूर है कि मस्जिद नबवी के अहाते में कुछ हबशी नौजवान ईद के रोज अपना सिपाहियाना खेल दिखा रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखने लगे और सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ में खड़े होकर उनका खेल देखा और उस वक्त तक देखती रहीं जब तक कि खुद ही उससे उकता गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उससे नहीं रोका, और इस पर सबका इत्तेफाक है कि नजर शहवत तो हराम है और बिला शहवत नजर करना भी खिलाफ उला है। ठीक है, तो ये तीसरा इन्होंने ओपिनियन नहीं बयान किया, बल्कि तीसरी जो उन्होंने बात करी ना कि सबका इत्तेफाक है, तो पहली वाले ओपिनियन वाले स्कॉलर्स का भी तो वो तो है ही कि अनकंडीशनल हराम है, और दूसरे ओपिनियन वाले स्कॉलर्स भी इस बात में मुत्तफिक हैं कि शहवत के साथ तो देखना हराम ही है और बिला शहवत नजर करना भी औरतों के लिए पसंदीदा नहीं है। इट्स नॉट लाइक, इट्स नॉट समथिंग यानी लाइकेबल, परमिसेबल तो है, मुबाह तो है, लेकिन लाइकेबल नहीं है। ठीक है, तो एहतियात जो है वो इनके नजदीक भी है जो कहते हैं कि मुकय्यद नजर करना यानी हराम है, तो इनके नजदीक भी ये चीज परमिस यानी ये चीज जो है वो पसंदीदा नहीं है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर किसी के जहन में ये सवाल आ सकता है कि जी जब पहली जो हदीस है वो सही हदीस भी है, ऐसा हुआ के औरतों को जो है वो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया कि भाई आप यहाँ से चली जाएं। ठीक है, और वहां पर शहवत का कोई ऐसा हमें तो नजर नहीं आता कि जी कोई ऐसा अंदेशा हो, तो फिर ये इतने सारे फुकाहा कहाँ से आ गए, क्यों आ गए कि जिन्होंने कहा कि नहीं जी मुकय्यदन हराम है। ठीक है भाई, व्हाट इज द डिफरेंस? अब इस डिफरेंस के ऊपर फिर फुकाहा जो बात के उलमा होते हैं ना वो फिर इनकी डिस्कशंस करते हैं कि जी ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने जो ये मुतलकन हराम करार दिया तो क्यों मुतलकन हराम करार दिया, और दूसरों ने जो मुकय्यदन हराम करार दिया तो क्यों मुकय्यदन हराम करार दिया। ठीक है, तो मुकय्यदन हराम करार देने वालों की दलील तो हमने पढ़ ली। ठीक है, कि जी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया, और उसी तरीके से और भी हदीसें हम वॉल्यूम नंबर 7 में पढ़ चुके हैं कि उम्मे सलमा रतनान्हा जो थी वो यानी देख रही थी कि हजरत बिलाल हबशी रतनान और दूसरे साहबी जो है उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खाने के लिए चीज दी थी, तो उन्होंने कहा कि अपनी वालदा के लिए वो बचा के रख लेना। ठीक है, और दूसरे एक और मुकाम के ऊपर आयशा सिद्दीका रतनान्हा जो है वो देख रही थी जब हजरत अबू तलहा रतनान और दूसरे साहबा की शहादत की खबर आई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बहुत अफसरदा थे, और आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मैं इस मामले को देख रही थी। ठीक है, तो اسی طریقے سے اور بھی معاملات آ جاتے ہیں کہ جس میں کہ امہات المومنین گھر سے باہر نکلتی تھیں, اور گھر سے باہر نکلنے کے اندر پھر وہی ہے کہ قل للمؤمنات یغضوا من ابصارهن, کہ بھئی جو نظر جھکا کر کے چلو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آگے سے کوئی مرد آ رہا ہے تو اس سے ٹکرا جاؤ, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب تو نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھ کر کے چلو کہ آگے کون ہے, نہ کسی گاڑی سے ٹکر کرو, نہ کسی مرد سے ٹکر کرو, نہ کسی دیوار سے ٹکر کرو, ٹھیک ہے, کہ اس طرح سے نیچے دیکھو. تو یہ بہت ساری دلیلیں جو ہیں وہ دوسرے اوپینین والے فقہا کے لیے تو بڑی آسان ہے سمجھنا, ٹھیک ہے, ان کی دلیلیں سمجھنا بڑا آسان ہے, لیکن جو پہلا والا معاملہ ہے اس کو سمجھنا ذرا سا مشکل کام ہے, ٹھیک ہے, ذرا سا مشکل, مشکل وہ بھی نہیں ہے لیکن تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کیوں منع کیا کہ نابینا صاحب ہی آ رہے ہیں تو تم یہاں سے چلی جاؤ, ٹھیک ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا نا یعنی نقل کی بجائے عقل کو استعمال کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. نقل کیا ہوتی ہے کہ نقل وہ ہوتی ہے جو کہ چیزیں ہمیں یعنی باقاعدہ واقعات موجود ہیں روایات کے اندر, احادیث کی روایات کے اندر واقعات موجود ہیں, ان کو ہم نے دلیل کے طور پر آپ کے سامنے نقل کر دیا, ٹھیک ہے نا. تو ان کو کہتے ہیں نقلی دلیلیں, ٹھیک ہے, یعنی نریٹڈ دلیلیں یا کاپیڈ دلیلیں, کہ بھئی یہ معاملہ ہوا تھا اور اس کو ہم نے آپ کے سامنے کاپی کر کے بتا دیا, ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے شریعت کے اندر عقلی دلیل, ٹھیک ہے. عقلی دلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نقلی دلیل جو ہے وہ بظاہر موجود نہ ہو آپ کے سامنے, کہ جس کو کہ سمپل نقل کر کے آپ پروف کر دیں بات کو, لیکن آپ کو تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کر کے نا کنکلوژنز نکالنے ہو, لاجک کو استعمال کرنا ہو, ٹھیک ہے. اور یہ لاجک جو ہے نا اس کے اندر شرط صرف یہ ہوتی ہے اس لاجک کے جائز ہونے, بیکاز لاجک جو ہے یہ تو شیطان بھی استعمال کرتا ہے, ٹھیک ہے, لاجک جو ہے وہ تو نفس بھی استعمال کرتا ہے بہکانے کے لیے. تو لاجک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کہ آپ کو کیئرفل رہنا پڑتا ہے کہ یہ لاجک جو ہے یہ میں جائز لاجک استعمال کر رہا ہوں کہ ناجائز لاجک استعمال کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو لاجک جو ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کوئی شریعت کے اصول کے خلاف آپ کو نہ پوائنٹ کر رہی ہو, آپ کو یعنی ایسی لاجک استعمال نہ کریں جو کہ شریعت کے خلاف کوئی کنکلوژن نکال رہی ہو, ٹھیک ہے. لیکن ایز لانگ ایز آپ شریعت کے اندر ہی کوئی کنکلوژن نکال رہے ہیں تو وہ لاجک ہمارے دین کے اندر حرام نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ عقلی دلیل جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے. تو اب یہاں پر عقلی دلیل کیا استعمال ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کو جو ہے وہاں سے چلے جانے کا حکم فرمایا, تو اس کے اوپر ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو موقع تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ وقت, ٹھیک ہے, وہ ایسا یعنی ایسی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی کہ جس کے اندر انسان کے اوپر جو غیرت تھی وہ زیادہ غالب تھی, ٹھیک ہے. یعنی غیرت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ ہے ہی, سارے انسانوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غیرت مند ہوں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ اغیر منی, کہ اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے, ٹھیک ہے. لیکن دوسروں کے مقابلے میں تو سب سے زیادہ غیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی ہی, کے پاس تھی ہی, لیکن اس موقع کے اوپر وہ غیرت بھی جو ہے وہ جو کہتے نا جوش مارنا, ٹھیک ہے, یعنی ایک کیفیت آپ کے اندر ہے اور دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے, لیکن اپنی ہی کیفیت اس وقت جوش مار رہی ہے, جیسے کہ محبت ہوتی ہے, رائٹ, اپنی اولاد کے لیے محبت ہوتی ہے, کبھی کبھی محبت جو ہے وہ جوش مارتی ہے اولاد کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو سب سے زیادہ غیرت تھی ہی, لیکن اس موقع کے اوپر وہ اور بھی زیادہ جوش مار رہی تھی. تو اس کیفیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کے لیے ان کو کہہ دیا کہ جی آپ بس مرد کی موجودگی میں میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی ازواج کو دیکھوں, ٹھیک ہے, اور حالانکہ وہ نابینا ہے وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے, ٹھیک ہے. تو ایک یہ ہو سکتا ہے, اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ مے بی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عالم کہ حضرت جو مکتوم تھے تو ان کے اوپر کچھ ایسی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تجلیات ڈالی ہوئی تھی یا کیا ان کے اندر خوبصورتی تھی یا کیا تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کے ساتھ جو ہے وہ یعنی خصوصی معاملہ فرمایا کہ ازواج کو نکل جانے کا حکم دے دیا وہاں سے, ٹھیک ہے, کہ بھئی یہ ان کی موجودگی کے اندر نا مناسب نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا کیا کیا چیز تھی ہمیں نہیں معلوم, ٹھیک ہے. لیکن ایک یعنی یہ چیزیں تو ہمیں نہیں معلوم, یہ تو ہم بیسیکلی گئے ایک بات جو ہے وہ تو عقلی دلیل سے ثابت ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ تو ہے ہی, اور وہ کیا ہے, वो ये है कि ये जो जितनी भी हदीसें हैं ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 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 मुआमलात फरमाए हैं, ठीक है, तो ये मुआमलात जितने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं, चाहे वो कहें हो चाहे वो करें हो, ठीक है ना, ये सारे के सारे जो हैं ये सिचुएशन के साथ, उस वक्त जो हालात और वाकयात चल रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिचुएशन के हिसाब से मामला करते, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से मामला फरमाते थे। जिन बंदों का की इन्वॉल्वमेंट होती थी उस सिचुएशन में, ठीक है, तो उन बंदों की कैफियात के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात फरमाते थे, ठीक है, या ये कि उस वक्त जो जिसको कहते हैं जी वक्त का तकाजा, ठीक है, तो उस वक्त का जो तकाजा ये जो हदीसें होती हैं ना, ये हदीसें जो हैं ये सिचुएशनल हदीसें होती हैं, और इन सिचुएशनल हदीसों को एक एक कम इल्म वाला इंसान हमारे जैसा जब पढ़ता है ना, तो वो उन हदीसों के अल्फाज को तो पढ़ लेता है, लेकिन वो उनकी सिचुएशन से वाकिफ नहीं होता, उनके सियाक व सबाक से वाकिफ नहीं होता, ठीक है, उनके जो है वो जिसको यानी कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, उनसे वाकिफ नहीं होता। इस वजह से कम इल्म वाला शख्स जब भी हदीसें पढ़ता है ना, वो उमूमन गलत कंक्लूजन निकाल रहा होता है उनसे, गलत कंक्लूजन निकाल रहा होता है, ठीक है, क्योंकि हर हदीस जो है वो अपने मौके के हिसाब से होती है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी तफसील होती है, किस वक्त ये वाकया पेश आया, ठीक है, किन के साथ ये वाकया पेश आया, किस दौर में ये वाकया पेश आया, ठीक है, किन्होंने कहा, किन्होंने सुना और कैसे इसके ऊपर अमल किया, ये बहुत सारी तफसीलात होती हैं जो कि एक आम आदमी जब हदीस पढ़ता है तो उसको ये चीजें नहीं मालूम होती हैं। इसी वजह से हदीस का जो इल्म है ना, ये उलमाए कराम का एरिया है, उलमाए कराम का एरिया है, इसलिए कि उलमा का काम ही ये होता है कि हदीसों के सिर्फ अल्फाज ना पढ़ें बल्कि मुकम्मल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ उनको समझें, यही करने वाले उलमाए कराम कहलाते हैं, और जो ये काम नहीं कर सकते अपने वक्त की कमी की वजह से, ठीक है, वसाइल की कमी की वजह से, असातज़ा कराम की सोबत ना मुयस्सर होने की वजह से, ठीक है, तो वो लोग उलमाए कराम नहीं कहलाते हैं, ठीक है, तो यही फर्क है उलमाए कराम में और अवामुन नास में। वरना किताबें पढ़ना चाहे उर्दू में हो चाहे अंग्रेजी में हो चाहे अरबी में हो, ये तो कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है, ये तो हर कोई पढ़ सकता है, जिसको भी किताबें पढ़ने का शौक हो जाए वो पढ़ सकता है, लेकिन वो किताबें पढ़ने से आलिम नहीं बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज यानी इस पहली जो ओकेजन थी कि जिसमें कि निकलने का मशवरा दे दिया, तो भाई दूसरे फुकहा ने इस हदीस को क्यों नहीं कंसिडर किया, इसकी बेसिस के ऊपर जो दूसरा ओपिनियन वाले फुकहा हैं उन्होंने मुतलकन हराम का फतवा क्यों नहीं दिया, ठीक है, तो उसकी वजह यही बनेगी कि उन्होंने इसको इस वाले सिचुएशन को यानी इस हदीस को जो कि नाबीना साहबी वाली हदीस है उसको इस सिचुएशन के साथ मुकैद किया कि ये बेशक इस मौके के ऊपर हुई थी। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा मामला हुआ ही नहीं था, हम ये नहीं कह रहे कि यह हदीस ज़ईफ है, हम ये नहीं कह रहे कि यह हदीस मौजू है, खड़ी हुई हदीस है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि चूंकि दूसरी हदीस इस बात पर शाहिद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज ने भी देखा, ठीक है, गैर महरम मर्दों को, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी देखा, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के अंदर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया। इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये वाली जो हदीस है हजरत ये नाबीना साहबी वाली हदीस, ये उस सिचुएशन के साथ मुकय्यद थी, ठीक है ना। तो ये काम कौन कर सकता है, ये अवाम नहीं कर सकते, ठीक है, ये काम उलमाए कराम फुकहाए उज़ामी कर सकते हैं, तो इसी वजह से फिर ये एक ओपिनियन भी उम्मत के अंदर मौजूद है, ठीक है, ये भी एक वैलिड और ऑथेंटिक ओपिनियन है। अब हमारे ऊपर क्या है कि हम जो है वो किसको फॉलो करें, तो हमें बस यही तीसरा वाला जो जो उसूल लिखा था ना वो ये है कि नजर शहवत तो हराम है, जो कि सबके नजदीक हराम है, लेकिन बिला जरूरत के नामहरम मर्द को देखना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, ये भी कोई पसंदीदा बात नहीं है। तो एक मोमिना औरत को के लिए क्या चीज फिर उसूल के तौर पे बात खुल के सामने आ गई कि भाई क्यों देख रहे हैं नामहरम मर्दों को, ठीक है, क्यों ये स्पेशली ये जो आजकल जो है ना, ये तो एक बहुत पहले तो था ना ये यानी जो बिल्कुल ही नॉन ऑब्जर्वेंट किस्म के और बेदीन किस्म के लोग होते थे, तो उनकी तस्वीरें होती थी, उनकी वीडियोज होती थी, ठीक है। लेकिन आज के दौर में जब ये वीडियो कैमरा इतना कॉमन हो गया है कि हर हर इंसान के हाथ में तकरीबन आ गया है, ठीक है, मोबाइल फोन की शक्ल में वीडियो कैमराज आ गए हैं, और ये वीडियो कैमराज अब वो हर जगह इस्तेमाल करता है बंदा, ठीक है, यानी बाहर भी करता है, बाजार में भी करता है, और अल्लाह के घर में भी करता है, हत्ता के हरम के अंदर भी करता है। तवाफ करते हुए लोग अपनी सेल्फियां बना रहे होते हैं, दूसरों को भी की भी वीडियोस बना रहे होते हैं, हत्ता के नबी अलैहिस्सलाम के रोजा मुबारक के ऊपर जब सलाम करने के लिए जाते हैं, राइट, सलाम करने का अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि जाकर के मेरे महबूब को सलाम करके आओ, तो वहां पर सलाम करना तो पता नहीं करते हैं, या थोड़ी देर के लिए सलाम करते हैं, बाकी वक्त वीडियो बना रहे होते हैं, राइट, अपनी भी बना रहे हैं जी वहां सलाम करते हुए वीडियो बना रहे हैं, और दूसरों की भी वहां पे गुजर रहे हैं, अब वो चाहे कोई भी हो गुजर रहा है उसकी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो अब वीडियो से तो कोई महफूज नहीं रह सकता, अब आप किसी को मना भी नहीं कर सकते, वरना फिर क्या होगा कि दिस विल बी द ओनली थिंग यू विल बी डूइंग, बस लोगों को मना ही कर रहे होंगे, बिकॉज हर कोई जो है वीडियो बना रहा है, अब किस किस को मना करें, हत्ता कि अब तो अथॉरिटीज ने भी मना करना छोड़ दिया, जो कि हरम के अंदर पहले मना करती थी, कैमरास को बाकायदा मैंने जब्त करते हुए देखा है वहां पर, वहां की पुलिस वालों को, वहां के जो मुतव्वे होते हैं, जो 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 यानी जो कि उनके मुतवल्ली होते हैं उस जगह के, तो उनको मैंने जब्त करते हुए देखा है अपने सामने, चंद साल पहले की बात है, लेकिन अब एवरीवन इज डूइंग इट, ठीक है। तो इस वजह से ना ये जो दौर है इसके अंदर एक खास चीज आ गई है कि जी उलमाए कराम के, मशायख उजाम की वीडियोज आ रही हैं, और हर कोई जो है व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो बना जो है वो फॉरवर्ड कर देता है, तो अब औरत जो है उसके उसके फोन के अंदर वीडियोज आ रही हैं, और वो उसको देख रही है, और वो आगे फॉरवर्ड भी कर रही है दूसरों को, ठीक है। तो भाई ये चीज जो है इवन दीनी मकसद के लिए ना, औरतों के लिए ये चीज पसंदीदा नहीं होगी, ये चीज ना करें तो बेहतर है, ऐसे करने से कोई दीन की हम खिदमत नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, दूसरों को क्या फायदा होना, हमें हमें कोई फायदा नहीं हो रहा होता इससे, तो बेहतर है कि इस यानी अगर आ जाए, और अगर आपको सुन नहीं है भाई बयान तो आप सुन सकते हैं ना, वीडियो को दूसरी तरफ कर दें, फोन का रुख जो है दूसरी तरफ कर दें, और सिर्फ ऑडियो को सुन लें, उससे तो कोई ममानियत नहीं है, कोई मना नहीं करता कि ये खिलाफ ओला है, कि मर्द की आवाज सुनना खिलाफ ओला है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आगे फरमाते हैं, एक औरत को दूसरी औरत के मवाज़े सतर को देखना बगैर खास जरूरतों के, ये भी इसी आयत के अल्फाज से हराम है, ठीक है। सतर के मौके को औरत भी दूसरी औरत के नहीं देख सकती बगैर जरूरत के, और जरूरत क्या चीज होती है, जरूरत जो होती है वो एक तो यानी इलाज मुआवजा, ये जरूरत होती है कि भाई इलाज के लिए तो एक्चुअली मर्द को भी दिखाया जा सकता है इलाज के लिए, लेकिन सिर्फ उस मौके को, सिर्फ उस जगह को ये जायज है, लेकिन औरत भी इलाज के लिए से देख सकती है, या तो कोई और रीजन हो सकती है ऐसी कि जिसकी वजह से कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, तो उस वजह से फिर दिखाना जायज होता है, लेकिन वो जरूरत के तहत आता है। अच्छा, क्योंकि जैसा ऊपर बयान हो चुका है कि मौज़े सतर यानी मर्दों का नाफ से घुटनों तक, मर्दों का क्या है सतर, नाफ से लेकर के घुटनों तक, अच्छा घुटने जो है वो सतर में दाखिल है या नहीं है, इसमें जो है फुकहा का इख्तिलाफ है, लेकिन एहतियात इसी में, अगेन वही एहतियात वाली बात आ जाती है, तकवा वाली बात आ जाती है कि भाई बहुत सारे फुकहा हैं कि जिनके नजदीक घुटने भी सतर में दाखिल है, तो अगरचे के यानी घुटने दाखिल ना होना भी फतवा है, ठीक है, लेकिन यानी घुटनों के ऊपर तो हर एक के नजदीक हराम हुआ ना, लेकिन चंद के नजदीक चूंकि घुटने भी सतर में दाखिल है, तो एहतियात जो है वो घुटनों को भी ना देखना ये कहलाएगी, मर्दों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, मर्दों के घुटनों को देखना भी, को ना देखना भी एहतियात में आ जाएगा फिर। अच्छा, औरतों का कुल बदन बजुज चेहरा और हथेलियों के, ये मवाज़े सतर के अंदर जैसे हम सूरह अहज़ाब की तफसीर में पढ़ चुके हैं, ये मवाज़े सतर हैं, उनका छुपाना सबसे फर्ज है, ठीक है, और सब का मतलब क्या, नीचे इन्होंने फुटनोट में हज़रत तकी उस्मानी बरकातहुम हमने लिख दिया है ताकि कोई कंफ्यूज ना हो, कि तमाम नामहरमों से, सब का मतलब यहाँ पर नामहरम है, और महरम क्या हुक्म आगे आ रहा है, जो कि अभी कुरान की आयत ही में अल्लाह ताला ने एक्सेप्शन किया है, ठीक है। तो ना कोई मर्द दूसरे मर्द का सतर देख सकता है, जैसे कि एक क्लास में बात हुई थी हॉकी का गेम हम इस नहीं देख सकते, ठीक है, बस अब ये अब क्या मुसीबत है, कुछ लोग कहते हैं क्या मुसीबत है जी हर चीज में डोंट डोंट ये ना करो वो ना करो ये ना करो, तो भाई अल्लाह की जन्नत कमानी है ना, अल्लाह की रजा कमानी है ना, तो चंद डोंट्स जो है, हॉकी का मैच देख लेने से आपको कौन सी जन्नत मिल जाती है, इस दुनिया में भी कुछ नहीं मिलता, ठीक है, थोड़ी देर की जो है वो एंटरटेनमेंट हो जाती है, कुछ लोग जो है वो आपके दोस्त बन जाएंगे, ठीक है, जो कि हॉकी के शौकीन है, उनके साथ बैठ के आप हॉकी देख लेंगे ना, तो उनकी दोस्ती आपको मिल जाएगी। लेकिन क्या उनकी दोस्ती इतनी अहम है कि अल्लाह की दोस्ती को रिस्क पे लगाया जाए, शरीयत की नाफरमानी की जाए, ठीक है, यानी सिर्फ अल्लाह की दोस्ती को, अल्लाह की दोस्ती का मामला तो हमें नजर नहीं आता ना कि जी अल्लाह दोस्त है नहीं है, हम तो वैसे ही अपने आप को अल्लाह का वली समझते हैं। लेकिन भाई गुनाह करते हैं तो गुनाह के फिर असरात होते हैं इंसान की जिंदगी में, और फिर वो असरात जो होते हैं ना, फिर हम टोटकों के पीछे भागते हैं कि ये पढ़ लो तो ये मसला हल हो जाएगा, वो पढ़ लो तो वो मसला हल हो जाएगा। भाई असल मसला हल करने का तरीका जो है वो तो तकवा इख्तियार करना है, ठीक है, वो मैं यत्तकिल्लाह यजअल्लहु मखरजा, कुरान में जो तरीका इस्तेमाल किया गया है हम उस तरफ देखना ही नहीं चाहते, तकवा की कोशिश ही नहीं करना चाहते। तो तकवा तो यही है कि मवाज़े सतर को ना देखें, तो कोई मर्द ना किसी मर्द का सतर देख नहीं सकता, ना कोई औरत दूसरी औरत का सतर देख सकती है, और मर्द किसी औरत का या औरत किसी मर्द का सतर देखे, ये बदरजह है ऊला हराम है। ठीक है, जब औरत का सतर नहीं देख सकती तो मर्द औरत का सतर कैसे देख सकता है, या औरत मर्द का सतर कैसे देख सकती है। आयत मस्कुरा के हुक्म गज़्वे बसर यानी यगुद्दु मिन अबसारहिन्ना, गज़्वे बसर ये इसका मस्दर बना, रूट वर्ड बना इसका, ठीक है, तो गज़्वे बसर के खिलाफ है, क्योंकि आयत का मतलब जो ऊपर बयान हो चुका है इसमें हर ऐसी चीज से नजर पस्त रखना और हटा लेना मुराद है कि जिसकी तरफ देखने को शरा में ममनू किया गया है, इसमें औरत के लिए औरत का सतर देखना भी दाखिल है। ठीक है, तो माँ और बेटी वाला मामला क्या होता है कि माँ बेटी को यानी ये दोनों भी औरतें ही होती हैं माँ और बेटी, लेकिन जब बेटी छोटी होती है, ठीक है, तो माँ ने उसको एक एक चीज सिखानी होती है, ठीक है, अपनी अपने आप को पाक करना सिखाना होता है, और उसको शरीयत के मसाइल बताने होते हैं, अपने आप को साफ करना सिखाना होता है, ठीक है, तो उस मौके उस खास जरूरत के तहत, वो भी एक जरूरत है यानी जरूरियात में वो भी शामिल है, वरना बेटी को ये बातें समझ में नहीं आएंगी, पता नहीं लगेंगी, ठीक है, तो वहां पर इस चीज की जरूरत के तहत फिर इजाजत होगी। लेकिन बिला जरूरत ऐसे ही जी कि माँ मेरी तो अम्मी है जी, मैं तो हर चीज जायज है, ठीक है, अम्मी के सामने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयद्रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुऊलतिहिन्ना इलल आया, ठीक है, तो ये इल्ला की सारी तफसील फिर आगे आ रही है। अभी फिलहाल वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, ठीक है, तो इसकी तफसील यहाँ पर फरमाते हैं कि जी जीनत लुगवी मानी के एतबार से उस चीज को कहा जाता है कि जिससे इंसान अपने आप को मुसय्यन और खुश मंजर बनाए, देखने वालों के लिए अच्छा बनाए, वो उम्दा कपड़े भी हो सकते हैं, जेवर भी, ये चीजें जबकि किसी औरत के बदन पर ना हो, अलहदा हो, ठीक है, यानी जेवर और मेकअप वगैरह का सामान जब अलग रखा हुआ, यानी शोकेस के ऊपर सजा हुआ है, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, तो औरत के बदन पर तो नहीं है ना, तो बइत्तेफाक उम्मत उनका देखना मर्दों के लिए हलाल है, जैसे बाजार में बिकने वाले जनाना कपड़े और जेवर के उनके देखने में कोई मुजायका नहीं है। इसलिए जम्हूर मुफस्सरीन ने इस आयत में जीनत से मुराद महले जीनत, महले जीनत, ठीक है, यानी वो आज़ा जिनमें जीनत की चीजें जेवर वगैरह पहनी जाती हैं वो मुराद दिए हैं, क्योंकि अगर जीनत मुराद लेते तो फिर क्या होता कि जी मेकअप के सामान को देखना हराम हो गया, तो इसका मतलब ये था कि ना तो आपका शौहर उनको यानी मेकअप के सामान को देखे, इसलिए कि मेकअप का सामान हराम हो गया ना देखना, ठीक है, और कपड़े औरत के देखना हराम हो, अब तो जी वो फिर क्या होता कि माशाल्लाह जो कपड़ों की दुकान है तो वहां पे सिर्फ औरतें ही होती, ठीक है, इसलिए कि मुसलमान मुल्क के अंदर मर्दों के लिए कपड़े औरतों का कपड़े बेचना भी हराम हो जाता, ठीक है ना, फिर क्या करते। खैर, तो अच्छा मानी आयत के ये हैं कि औरतों पर वाजिब है कि वो अपनी जीनत यानी मवाकई जीनत को जाहिर ना करें, ठीक है, यानी उन मौकों को बिल्कुल जाहिर ना करें जिनके ऊपर की ये जीनत की चीजें पहनी जाती हैं। इस आयत में जो औरत के लिए इजहार जीनत को हराम करार दिया है, आगे इस हुक्म से दो इस्तेस्ना बयान फरमाए गए हैं, एक मंजूर के एतबार से है यानी जिसकी तरफ देखा जाए, मंजूर नजर का इसम मफूल है, जो लोग ग्रामर आप लोग पढ़ रहे हैं तो पता है कि इससे मफूल क्या होता है, कि जिसके ऊपर कोई फेल किया जाए। तो फेल यहां पर क्या है, देखना, और जिसको देखा जाए उसको मंजूर कहते हैं, ठीक है। नजर का इसे मफूल मंजूर होता है, तो एक मंजूर के एतबार से है, यानी एक इस्तिस्ना मंजूर के एतबार से है यानी जिसकी तरफ देखा जाए, और दूसरा नाजर यानी देखने वाले के एतबार से, ठीक है। नाजर इसम फाइल का सीगा है। तो जीनत और महल जीनत का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो हम आगे चलते हैं कि अहकाम पर्दा से इस्तिस्ना एक्सेप्शन एग्जेम्पशन बल्कि, ठीक है, वो क्या है। तो फरमाते हैं कि पहला इस्तिस्ना मा ज़हरा मिन्हा का है, ठीक है, यानी मंजूर, यहाँ पे अब मंजूर की बात हो रही है जिसको के देखा जाता है। तो मंजूर में क्या चीज एग्जेम्प्ट है, मा ज़हरा मिन्हा, ये एग्जेम्प्ट है। तो मा ज़हरा मिन्हा है क्या, ठीक है, अब इसकी तफसीर आ रही है कि यानी औरत के लिए अपनी जीनत की किसी चीज को मर्दों के सामने जाहिर करना जायज नहीं है, बजुज उन चीजों के जो खुद ब खुद जाहिर हो ही जाती हैं, खुद ब खुद जाहिर हो ही जाती हैं, ठीक है। तो मा ज़हरा मिन्हा का ये मतलब है। अच्छा, अब ये क्या है जो खुद ब खुद जाहिर हो जाती हैं, यानी कामकाज और नकलो हरकत के वक्त जो चीजें आदतन खुल ही जाती हैं और आदतन उनका छुपाना मुश्किल है, वो मुस्तस्ना है, ठीक है, इनके इजहार में कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। इब्ने कसीर में ये की तफसीर से इस बात को इन्होंने यहां नकल किया है। मुराद इससे क्या है कि इसमें हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन की तफसीरें मुख्तलिफ हैं, ठीक है। जैसे कि हम पीछे मेंशन कर चुके हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन की खासियत क्या थी कि वो फकीह सहाबी थे, इमामुल फुकहा कहलाते हैं, ठीक है, और यानी बड़े बड़े जो फिकी मसाइल है ना वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की इंटरप्रिटेशन के बेसिस के ऊपर फुकहा ने फिर डिराइव किए हैं। और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की क्या खासियत है, एक तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये यानी कजन थे, ठीक है, उम्र में ये छोटे थे, ठीक है, लेकिन इनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तफसीर की दुआ करी थी, तो ये इमामुल मुफस्सिरीन कहलाते हैं। तो इनकी तफसीर जो है वो यानी सबसे ज्यादा जो है वो यानी राइट समझी जाती है, ठीक है। लेकिन एक बात वैसे हमें ये भी याद रखनी चाहिए, इनकी जाहिर है इनका मुकाम ये सहाबी का मुकाम था, लेकिन अगर कंपेयर करें ना अब्दुल्ला इब्ने मसूद और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को, तो तफसीरी जो बातें हैं वो तो हमें अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से मिलती हैं, लेकिन फिका वाली बातें जो है ना जिनका ताल्लुक जो है वो शरी मसाइल से होता है, ठीक है, तो शरी मसाइल वाली बातें ज्यादा अब्दुल्ला इब्ने मसूद से मिलती हैं। तो अगर हम कुरान को उठा करके देखें ना तो कुरान के अंदर बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला ने बहुत सारे टॉपिक्स को अल्लाह ताला ने मेंशन किया है, ठीक है, इजमाली तौर पर मेंशन किया है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स को मेंशन किया है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स के अंदर क्या है, अल्लाह ताला की तौहीद वहदानियत, राइट, रिसालत से मुतालिक बातें हैं, ठीक है, हत्ता के फरिश्तों के मुतालिक भी बातें हैं, शैतान और शैतान के जो चेले हैं उनके मुतालिक भी बातें हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है वो पिछली अकवाम के वाकयात भी बेशुमार हैं, बहुत सारे पिछले अकवाम के वाकयात हैं, बनी इसराइल के तो सबसे ज्यादा हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो आखिरत के कितने सारे वाकयात हैं, जन्नत के कितने सारे उसके अंदर नजायर मिलते हैं, जहन्नम के कितने सारे नजायर मिलते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें कुरान के अंदर हैं। और साथ साथ कुरान के अंदर फिकही मसाइल भी हैं, ठीक है ना, फिकही मसाइल भी हैं, लेकिन कितने हैं हम सब जानते हैं कि बहुत थोड़े हैं, ठीक है ना, बहुत थोड़े हैं। नमाज का तरीका कुरान के अंदर नहीं है, ठीक है, रोजा रखना का तरीका, हज का तरीका, बहुत सारे तरीके कुरान के अंदर बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बल्कि कुरान के अंदर क्या चंद फिकही मसाइल हैं, विरासत के मसाइल हैं, तलाक के मसाइल हैं, राइट, और इस तरीके के चंद यानी जैसे कि पीछे यानी इखलाकियात के, खैर वो तो फिका में नहीं आते हैं, लेकिन इखलाकियात भी उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक है जो कि कुरान के अंदर मौजूद है, ठीक है, लेकिन फिकी जो मसाइल है कुरान के अंदर दूसरी चीजों के मुकाबले में बहुत कम है, ठीक है। तो अब अगर हम अब्दुल्ला इब्ने मसूद अतारन की खासियत को देखें तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद अतारन की खासियत क्या है कि ये जितने तफसीरी मसाइल हैं, ठीक है, तो इनके अंदर इनकी एक अथॉरिटी है, لیکن جو فقہ کو اگر ہم دیکھیں نا تو فقہ تو قرآن کے اندر ہے ہی بہت تھوڑی, ٹھیک ہے. تو فقہ جو ہے وہ تو پھر جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی کہ حدیث سے فقہ نکلتی ہے, ٹھیک ہے, قرآن سے تھوڑی فقہ نکلتی ہے, باقی ساری کی ساری تفصیل فقہ کی کہاں سے آتی ہے, حدیث مبارکہ سے آتی ہے. تو جہاں جس کو فقہ کا ایکسپرٹ مانا جائے گا, فقہ کا امام مانا جائے گا, تو اس کی امامت پھر کس چیز کے اوپر حاوی ہوگی, وہ قرآن کے اندر جو فقہی مسائل ہے نا وہ اس کا ایریا آف ایکسپرٹیز ہے, ٹھیک ہے, اور حدیث کے اندر جو تفصیل کے ساتھ فقہ آئی ہے وہ اس کا ایریا آف ایکسپرٹیز ہے. تو عبداللہ ابن مسعود اللہ تعالیٰ کا یہ ہے ایریا آف ایکسپرٹیز, یعنی حدیث مبارکہ وچ از بہت زیادہ گہری, اور قرآن کے اندر تھوڑے جو فقہی مسائل ہیں وہ ان کا ایریا آف ایکسپرٹیز ہو گیا. لیکن عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ جو ہے قرآن کے اندر جتنے دوسرے مضامین ہیں ان کے اندر ان کو ایکسل اللہ تعالیٰ نے ایکسلنس دیا تھا. تو اس سے نا پھر ہمیں یہ ایزیوم کر لینا کہ نہیں جی قرآن کے اندر جو فقہ ہے تو چونکہ فقہ بھی قرآن کے اندر ہے, اس وجہ سے عبداللہ ابن مسعود اللہ تعالیٰ فقہ کے اندر بھی امام مانے جائیں گے, عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ فقہ میں بھی امام مانے جائیں گے, تو یہ بات صحیح نہیں لگتی ہے کیونکہ فقہ تو قرآن کے اندر ہے ہی تھوڑی, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر جو ٹاپک چل رہا ہے نا کہ جی کیا چیز ما ظاہرہ منہا کے اندر داخل ہے کیا چیز نہیں داخل ہے, تو اس کے اندر نا عبداللہ ابن مسعود اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی جو ہے یا ان کی جو 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 یعنی ان کا مقام ہے وہ عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ کے اوپر بہرحال فوقیت ہی دکھائی دیتی ہے اس کی, کیونکہ فقہ کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے امامت کا مرتبہ عطا فرمایا تھا. تو ما ظاہرہ منہا کی تفسیر عبداللہ ابن مسعود اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی, انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ یعنی جس چیز کو مستثنی کیا گیا ہے وہ اوپر کے کپڑے ہیں, ٹھیک ہے, اوپر کے کپڑے جو عورت پہن کر کے باہر نکلتی ہے, گھر کے اندر نہیں, گھر سے جب باہر نکلتی ہے, حجاب بالبرقع, ٹھیک ہے, جو حجاب کا دوسرا درجہ ہے حجاب بالبرقع, تو جب وہ باہر نکلتی ہے تو اس وقت جو اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں نا, یہ ما ظاہرہ منہا کی یعنی کی تفسیر ہے. جیسے برقع یا لمبی چادر جو برقعے کے قائم مقام ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بے شک آپ کے پاس برقع نہ ہو, ابایا نہ ہو, لیکن آپ نے ایک لمبی چادر ایسی اپنے اوپر اوڑھ لی ہے کہ جو کہ ابایا ہی والا کام دے رہی ہے, برقعے والا ہی کام دے رہی ہے, تو اس کے قائم مقام ہو گئی. یہ کپڑے زینت کے کپڑوں کو چھپانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کہ سب جانتے ہیں. تو مراد آیت کی یہ ہو گئی کہ زینت کی کسی چیز کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے, حتیٰ کہ جو آپ نے اپنے اندر شلوار قمیض وغیرہ پہنی بھی ہے جس کے اوپر چاہے گوٹے کناری وغیرہ ہو چاہے کچھ بھی ہو, سب کچھ جو ہے وہ اس سے چھپ جاتا ہے. تو کسی چیز کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے بجز, یعنی کپڑوں کو بھی زینت کے جائز نہیں ہے دکھانا, بجز ان کپڑوں کے, بجز ان اوپر کے کپڑوں کے جن کا چھپانا بضرورت باہر نکلنے کے وقت ممکن نہیں, جیسے برقع وغیرہ. اب اسی کے اوپر کسی بھائی نے چند دن پہلے سوال بھی کیا تھا کہ جی اگر برقع ہی زینت والا بن جائے, ٹھیک ہے, جیسے کہ کوشش یہی ہوتی رہتی ہے جن جگہوں پر بڑے عرصے سے برقعے کا رواج تھا یا حکومت کی طرف سے پابندی تھی کہ نہیں جی برقع پہنے بغیر نہیں نکلنا, تو وہاں پر کیا کہ جی برقعے کو جو ہے وہ زینت بنانا شروع کیا, ٹھیک ہے, یعنی اس کے اندر بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ ڈیزائنز آنے شروع ہوئے, کلرز کے ڈفرنٹ کمبینیشنز آنی شروع ہوئیں. ایک کلر والا برقع تو وہ تو اس میں نہیں آئے گا, چاہے وہ کالا ہو, چاہے وہ براؤن ہو, چاہے وہ یعنی نیلا بھی اگر ہو جائے, ٹھیک ہے نا, ایک کلر جو ہے نا اس کے اندر تو زینت کی چیزیں تو نہیں ہے نا, لیکن کلر ایک اس کا بیک گراؤنڈ کلر ہو, ایک اس کا فور گراؤنڈ کلر ہو, ایک اس کا اوپر کے حصے کا کلر ہو, ایک اس کا نیچے کے حصے کا کلر ہو, اس کے اوپر پھر ماشاء اللہ ڈیزائنز بنے ہوئے ہوں, ٹھیک ہے, تو یہ تو پھر اس کے اندر یعنی وہ تو خود ہی پھر زینت کی چیز بن گئی نا. اسی طرح سے ہمارے ملکوں کے اندر تو برقعے کا رواج ہی ختم ہو گیا تھا, وہ تو چند ایک ہم کہتے تھے جی وہ شٹل کاکس, رائٹ, جو بےچارے پٹھانوں کی عورتیں ہوتی تھیں وہ خاص قسم کا ایک برقع پہنتی تھیں جالی دار جو جس کا نقاب ہوتا تھا, تو لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ جی ماشاء اللہ مشائخ کا کام ہوا اور لوگوں نے عوام کے اندر آ کر کے دین کی تبلیغ کا کام کیا بہت, تو اس کے بعد نا جو دنیا دار طبقہ تھا ان کے اندر پھر ابایا کا رجحان ہوا, تو پورے کراچی شہر کے اندر ایک ابایا کی دکان ہوتی تھی, ٹھیک ہے, جبکہ یعنی یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا نا ابایا پہننے کا, ٹھیک ہے, تو ایک ابایا کی دکان ہوتی تھی. پھر جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھی, عوام کے اندر ڈیمانڈ بڑھی, رائٹ, تو ابایا کی دکانیں بھی اللہ تعالیٰ نے کھلوانی شروع کر دی. اب کتنی ہزاروں دکانیں ابایا کی ملتی ہیں, لیکن شیطان جو ہے نا وہ یعنی ہار نہیں مانتا کہ جی او یہ تو میرے ہاتھ سے نکل گئی ہیں عورتیں, ठीक है, बाया की तरफ इनका रुझान हो गया, अब ये मेरे हाथ से कहीं, अब तो मैं जो अब मैं इन औरतों को छोड़ देता हूँ, अब मैं कहीं और जा करके अपना काम करता हूँ, ऐसा तो वो नहीं करता ना। तो फिर क्या होता है, आप देखने जाकर के अबाया की दुकानों के अंदर क्या हो रहा है, राइट। वही अबाया की दुकानें जो है वो जीनत की दुकानें बन गई, ठीक है, उन्हीं के अंदर जो है माशाल्लाह जीनत वाले कपड़े मिलते हैं, यानी अबाया ही जीनत वाला कपड़ा बन गया। तो फरमाया कि ये बुरका वगैरह इसमें शामिल है। अच्छा, अब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तफसीर क्या है, उन्होंने फरमाया कि इससे मुराद चेहरे और हथेलियां हैं, क्योंकि जब औरत किसी जरूरत से बाहर निकलने पर मजबूर हो तो नकलो हरकत और लेन देन के वक्त चेहरे और हथेलियों को छुपाना मुश्किल है, ठीक है। तो अब अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कब मुश्किल है, किस कंडीशन में मुश्किल है, तो इनकी यही फिर हम बात समझी जाएगी कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा ही रहे हैं जिन जगहों पर मुश्किल है, ठीक है, जहां पर मुश्किल है वहां पर जो है वो नहीं छुपा सकती, और जहां पर मुश्किल नहीं है तो वहां पर वो छुपा डंडा लेके तो नहीं खड़ा होता ना कि नहीं जी खोलो, ठीक है। स्पेशली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के अंदर और इवन हम वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जाते हैं तो कोई डंडा लेके नहीं खड़ा होता कि जी खोलो, ठीक है, या इसके बगैर तुम्हें तुम्हें इजाजत नहीं है बाहर निकलने की, ठीक है। तो फिर मौके जरूरत कहलाएगा ना कि जहां पर मुश्किल वहां पर खोलने की इजाजत होगी। तो ये दोनों चीजें फिर ना, दरअसल अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वाली तफसीर भी दरअसल अब्दुल्ला इब्ने मसूद वाली तफसीर ही की तरफ पॉइंट कर रही है, और फिर हमने इनके दूसरे अकवाल जो है वो वॉल्यूम नंबर 7 के अंदर पढ़े भी थे कि खुद इनके अकवाल ऐसे हैं कि सिर्फ एक आंख खुली भी हो और पूरी की पूरी जो है वो और ढकी हुई हो। तो इस वजह से ना यहाँ पर जो इनकी तफसीर है इसको कोई ले करके आपको गुमराह ना करे, ठीक है, आपको जो है वो कंफ्यूज ना करे कि देखो 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 इमामुल मुफस्सरीन ये फरमा रहे हैं और मौलवी साहब ये फरमा रहे हैं, तो मौलवी को आप ज्यादा तरजीह देंगे कि इमामुल मुफस्सरीन को ज्यादा तरजीह देंगे, ठीक है ना। तो जिन्होंने बुरका करना होता है ना, जिन्होंने पर्दा करना होता है, तो वो तो कर रही होती हैं, वो तो पहले से कर रही हैं और वो आगे भी करती रहेंगी, तो मसला उनका नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं करना तो उनके लिए तो ये किताबी की किताब के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो वैसे ही अप्लाई नहीं होती हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं करना उन्होंने तो चाहे कितनी भी दलील उनके सामने आप कहते हैं कि कुरान की आयत जो है ना वो देखो कह रही है बुरका करो, ठीक है, वो कहेंगी भाई मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो नहीं करना चाहती, ठीक है, उसने तो करना ही नहीं है। तो मसला ना करने वालों का होता है और मसला ना ना करने वालों का होता है। मसला किन का होता है, मसला सारा का सारा ना ये शैतान का मसला होता है, ठीक है, सारा मसला जो है वह शैतान है असल में। तो शैतान जो है ना वो क्या करता है कि वो जो है ना वो जो करने वाले होते हैं ना वो करने वालों के दिल में शक पैदा करता है, ठीक है, करने वालों को वरगलाता है और यानी गलत बातों को दलील के तौर पर इस्तेमाल करता है, ठीक है, वरगलाने के लिए, शक पैदा करने के लिए। और शक से हिफाजत करने का इकदाम करना ये हमारे दीन ने सिखाया है, ठीक है। तो हमें इस वजह से इन इन बातों को करने की जरूरत पड़ती है, पढ़ने की जरूरत पड़ती है, समझने की जरूरत पड़ती है, ताकि शैतान के इन हरबों से हम अपने आप को और अपने मोहब्बत करने वालों को, अपने साथ रहने वालों को बचा सके, ठीक है। बस इसी वजह से सारा का सारा इल्म हासिल किया जा रहा है, अदरवाइज आप खुद तो जाकर के मुराकबे कर लेती हैं, तलावतें कर लेती हैं, खाना बना लेती हैं, वो ज्यादा शायद आपको फायदा होता, ठीक है। अगर ये मकसद सामने है तो फिर ये मकसद ज्यादा फायदा मंद है, ठीक है, कि भाई शैतान से हमने बचना है और अपने मोहब्बत करने वालों को बचाना है, ये गोल है हमारा इस पूरी की पूरी क्लास के करने का, ठीक है। वरना अगर ये गोल ना हो तो फिर बाकी सारे काम जो है उनसे शायद आपको ज्यादा फायदा हो जाए, ठीक है। तो ये गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और इस गोल के क्लियर होने के लिए जो फंडामेंटल चीज है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमारे जहन में क्या है, वही जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, शैतान की एग्जिस्टेंस, शैतान की मौजूदगी, शैतान की दुश्मनी, ठीक है, शैतान से बचाना। तो जब भी बार बार कहते हैं कि जी हमारा दीन सिर्फ रहमान को याद रखना नहीं सिखाता, ठीक है, बल्कि हमारा दीन शैतान को याद रखना भी सिखाता है। शैतान को भी याद रखो इसलिए कि वो तुम्हारा दुश्मन है, और अल्लाह ताला चाहता है कि तुम इस दुश्मन को कभी भी ना भूलो और उसको तुम दुश्मन बना करके रखो। और दुश्मन बना के रखने का मतलब ये होता है कि एक तो उसके साथ दोस्ती ना लगाओ, ठीक है, और दूसरा कि उससे कभी भी गाफिल ना होना। दुश्मन से गाफिल हो गए तो फिर तुम अपनी हिफाजत नहीं कर पाओगे। ठीक है। अच्छा आगे फरमाते हैं कि इसलिए हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद अल्लाह की तफसीर के मुताबिक तो गैर महरम मर्दों के सामने औरत को चेहरा और हाथ खोलना भी जायज नहीं, सिर्फ ऊपर के बुरके वगैरह कपड़े बुरके वगैरह का इजहार जरूरत मुस्तस्ना है। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अल्लाह की तफसीर के मुताबिक चेहरा और हाथों की हथेलियां भी गैर महरमों के सामने खोलना जायज है। तो जायज का मतलब इनके नजदीक डिस्कस कर चुके हैं अभी, इसलिए फुकहाए उम्मत में भी इस मसले में इख्तिलाफ है कि चेहरा और हथेलियां पर्दे से मुस्तस्ना और उनका गैर महरमों के सामने खोलना जायज है या नहीं। वही बात इख्तिलाफ वाली, जैसे पहले हमने सारी डिस्कस करी थी कि औरतों को मर्दों को देखना जायज है कि नहीं है, ठीक है, तो उसके तफसीली बहस करी कि क्या दलीलें हैं, क्या दलीलें नहीं है, क्या है वो सब, नकली दलीलें भी आपको बताएं, अकली दलीलें भी आपको बताएं। उसी तरीके से ये भी एक मौजा इख्तिलाफ है, एक इख्तिलाफ का मौका फुकहा के दरमियान है। अच्छा तो ये तो इख्तलाफ है कि जायज है कि नहीं है, मगर अब ये मगर के ऊपर फिर सारी बात आ जाती है कि मगर इस पर सबका इत्तेफाक है कि अगर चेहरा और हथेलियों पर नजर डालने से फितने का अंदेशा हो तो उनका देखना भी जायज नहीं है और औरत को उनका खोलना भी जायज नहीं है, ठीक है। तो अब ये बात आई फितने का अंदेशा, ठीक है, तो अब ये फितने का अंदेशा, अब इसके ऊपर क्या सवाल आता है जी? सबसे पहले क्लास वाले जरा बताएं, क्योंकि हम कोई बयान तो नहीं कर रहे ना, तो इस वजह से सवाल जवाब का भी ऑप्शन आपकी तरफ से भी ओपन है और हमारी तरफ से भी ओपन है कि हम भी आपसे सवाल कर सकते हैं। तो क्या सवाल पैदा होता है इस जुमले को पढ़ के? जी तालिबे इल्माना सवाल हम इसको कहेंगे, ठीक है। एतराजाना सवाल आप नहीं कर रही होंगी इंशाल्लाह कि जी आप एतराज करें इस बात के ऊपर, लेकिन इस एतराजी सवाल को एक तालिबे इल्म जो है ना बात समझने की खातिर अपने उस्ताद से पूछता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं तालिबे इल्माना सवाल, जो कि एतराज की शक्ल में होता है लेकिन असल में वो एतराज नहीं होता। तो क्या सवाल आना आ, आ, आता है जी इसके ऊपर? माशाल्लाह इतने सारे लोग तो हैं, किसी के जहन में नहीं आ रहा। तो चले माशाल्लाह, एक उमर उमर साहब ने मुश्किल हल कर दी कि फितना किसको कहते हैं, फितना क्या है, ठीक है। बल्कि इसके ऊपर एक और भी सवाल ये था कि इस यानी इससे भी बड़ा एक सवाल कि फितना, फितना तो चले जी यानी आजमाइश को कहते हैं ना, तो फितना किसको कहते हैं, ये भी एक सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल जो कि ज्यादा अहम है एक्चुअली, वो ये है कि हु डिफाइन्स व्हाट इज फितना, ठीक है, कौन कहेगा कि यानी कौन डिफाइन करता है कि फितना क्या है, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर हम एक मिसाल से आपको समझाते हैं कि एक मिनट है प्राइवेट में तो पढ़ लेता हूँ। हाँ माशाल्लाह, ये अच्छी बात लिखी है कि तकी मौलाना तकी उस्मानी तुम ने, जहाँ तक मुझे बात समझ में आई है, वो कि उन्होंने एक किताब में लिखा था कि अपने आप को फितने से महफूज समझना ये सबसे बड़ा फितना है, ठीक है। यानी बड़ों की बात भी बड़ी होती है कि अपने आप को फितने से महफूज समझना सबसे बड़ा फितना है, ठीक है। यानी जैसे कल बात हो रही थी जो लोग मौजूद थे बयान में, कि अपने आप को मुत्तकी समझना यही इस बात की दलील है कि मुत्तकी नहीं बने अभी, ठीक है। उसी तरीके से ये भी बात हो गई। तो एक तो ये कि जी फितना है क्या, ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ी बात हम पहले कर चुके हैं, और दूसरा ये कि हु डिफाइन्स, किस कौन तारीफ करेगा कि फितना क्या है। तो इसको हमने एक और मिसाल से पहले समझाया था कि दीन के अंदर हरज नहीं है, ठीक है, दीन में जो है वो तकलीफ नहीं है, मुश्किल नहीं है। तो अब ये तकलीफ, पहली बात क्या तकलीफ होती है, ठीक है, उसको कौन डिफाइन यानी वो क्या है। और कौन डिफाइन करेगा कि तकलीफ क्या होती है। तो मिसाल क्या दी थी कि जी एक नया नया कोई लड़का है जो कि नमाज पढ़ना शुरू करता है, तो अब उसको तो तकलीफ ही होगी ना नमाज पढ़ने में, कि जी अच्छा खासा मैं कई घंटे बैठ करके यकसुई के साथ काम कर सकता था अपना, लेकिन जोहर की अजान हो गई, अब जो है मुझे अपना काम छोड़ना पड़ रहा है, और जोहर की नमाज के लिए वुजू करो और जा करके मस्जिद जाओ, या मस्जिद ना भी जाओ घर के अंदर पढ़ो राइट असर असर के लिए, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद उठ जाओ, फिर उसके बाद जो है वो काम को छोड़ दो और जाकर के नमाज पढ़ो, फिर मगरिब की थोड़ी देर के बाद और भी थोड़ी देर के बाद फिर मगरिब की अजान हो जाएगी राइट। तो ये क्या है, ये तकलीफ ही है ना, ये एक हर्ज ही है ना ठीक है। तो ये इस लड़के के नजदीक ये चीज हर्ज है, लेकिन जब एक शख्स जो है वो नमाज का आदी हो जाता है ठीक है, अच्छा उसका ईमान बन जाता है, तो उसके लिए चीज हर्ज रहती है, उसके लिए हर्ज नहीं रहती है ठीक है। तो अब जो है वो कौन डिफाइन करेगा कि हर्ज है क्या, दीन के अंदर हर्ज क्या है, क्या ये फजर की नमाज में उठना ये हर्ज कहलाएगा, और क्या इसके ऊपर ये ला हर्जा फिर दीन वाला उसूल जो है वो अप्लाई होगा ठीक है। अगर इस लड़के से पूछा जाए तो वो कहेगा बिल्कुल मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल काम है फजर में उठना ठीक है, तो मैं तो फजर की नमाज नहीं पढ़ूं क्योंकि दीन के अंदर तकलीफ नहीं है। लेकिन उलमा से पूछा जाएगा ना, उलमा की डेफिनेशन ली जाएगी कि हर्ज क्या है, क्योंकि उलमा भी कुछ चीजों को हर्ज करार देते हैं और ये लड़का भी कुछ चीजों को हर्ज करार देता है, लेकिन हु विल यू चूज ठीक है, उलमा की आप डेफिनेशन लेंगे कि इस लड़के की डेफिनेशन लेंगे। उसी तरीके से ना फितना क्या है और फितना कौन डिफाइन करेगा कि क्या है, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट यानी वेरिएबल्स हैं इसके अंदर। तो इसके तहत फिर हमने पीछे बात करी थी कि फितना एक तो ये है कि तबीयत के अंदर मिलान पैदा होना नाजायज की तरफ ठीक है, नाजायज की तरफ मिलान पैदा हो जाना कि जी मिलान किसको कहते हैं, रगबत को कहते हैं ठीक है। और रगबत के बाद क्या चीज आती है फिर ठीक है, जब रगबत पैदा हो जाती है किसी नाजायज चीज की तरफ या किसी भी चीज की तरफ रगबत पैदा हो जाती है, तो ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम है ठीक है, कि ये रगबत जो है ना ये तलब के अंदर ट्रांसलेट होती है, कन्वर्ट होती है ठीक है। देन यू वॉन्ट टू अक्वायर दैट ठीक है, नाजायज की तरफ जब रगबत पैदा हो गई अब नाजायज को अक्वायर भी करने की इंसान कोशिश करता है, और जब अक्वायर करने की कोशिश करता है तो उसको कोशिश के अंदर कामयाबी भी हो जाती है ठीक है, और जब कामयाबी हो जाती है नाजायज चीज उसको मिल जाती है, तो किसी भी चीज की सोहबत के अंदर जो चीज आपको अच्छी लगती है ठीक है, जाहिर है अच्छी लगी थी जब भी तो रगबत पैदा हुई थी ना, तो रगबत पैदा हुई तो फिर आपने तलब कर लिया, अब वो अच्छी चीज वो आपके पास आ गई, अब आपको उसकी सोहबत नसीब हो गई। तो जब भी अच्छी चीज जिसको कि आप अच्छा समझते हैं उसकी सोहबत में रहेंगे तो क्या होता है जी, अगर क्लास वाले जवाब दें तो ज्यादा अच्छा होगा। जब किसी भी चीज जिसको आप अच्छा समझते हैं उसकी सोहबत में आप रहते हैं तो फिर क्या चीज आती है, क्या चीज पैदा होती है, दीन के अंदर एंटर होने में सख्ती नहीं है, बट व्हेन वी एंटर हो जाने के बाद सख्ती नहीं है, हाँ हो जाने के अंदर यानी हो जाने के वक्त जो है वो सख्ती होती है, जब आप दीन को अपना लेते हैं ना तो फिर दीन आपके लिए आसान हो जाता है, जैसे कि हम तफसीर के अंदर पढ़ चुके हैं वनुयस्सिरुहु लिल्युसरा ठीक है, वनुयस्सिरु का लिल्युसरा वाली तफसीर में बहुत तफसील से पढ़ा था कि अल्लाह ताला फिर हमारे मिजाज को ऐसा बना देते हैं कि फिर दीन की सख्तियां हमारे लिए आसान हो जाती हैं, मकरूहात तबईया मकरूहात शर यानी मकरूहात शरईया मकरूहात तबईया बन जाती हैं, वो हमारे मिजाज का हिस्सा बन जाता है, तो वो सारी चीजें आसान हो जाती हैं, लेकिन शुरू में आसान नहीं होती, शुरू में सबको ही मुश्किल लगती हैं, गरूर किबर नहीं जी, उनसे मोहब्बत पैदा हो जाती है ठीक है। जब भी किसी चीज की सोहबत में आप रहते हैं जिस चीज को आप अच्छा समझते हैं ना, तो उस चीज से फिर दिल के अंदर मोहब्बत के जज्बात पैदा हो जाते हैं, वो चीज हमारे अंदर भी पैदा होनी शुरू हो जाती है, हाँ पैदा होनी शुरू हो जाती है उसके असरात पैदा होने शुरू होते हैं, लेकिन असरात बाद में पैदा होते हैं, पहले उसकी मोहब्बत हमारे दिल में पैदा होनी शुरू होती है ठीक है। तो जब नाजायज की तरफ देखेंगे और उसकी उसकी तरफ रगबत पैदा होगी, रगबत तलब में कन्वर्ट होगी, तो यानी नाजायज को फिर अपने पास अक्वायर भी कर लेंगे, और जब अक्वायर कर लेंगे तो चूंकि उस नाजायज चीज को अच्छा समझ के अक्वायर किया है तो अब उसकी मोहब्बत भी पैदा होनी शुरू हो जाएगी, यानी नाजायज की मोहब्बत दिल के अंदर पैदा हो जाएगी। और जब नाजायज की गुनाह की मोहब्बत दिल में पैदा हो गई, नाजायज का मतलब क्या होता है, गुनाह होता है, जब उसकी मोहब्बत दिल में पैदा हो गई तो फिर یعنی حلاوت ایمان کہاں سے ملے گی، اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے پیدا ہوگی، قرآن کی محبت کیسے پیدا ہوگی، رائٹ، تقویٰ کی فکر کیسے پیدا ہوگی، آخرت کی فکر کیسے پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، ناجائز کو دل میں بسایا ہوا ہے، رائٹ، حرام کو جو ہے وہ دل کے اندر محبوب بنا کر کے رکھا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ تمنا کیا ہے کہ جی اللہ کی محبت ہونی چاہیے، نماز میں جو ہے وہ دل لگنا چاہیے، اور تلاوت کی حلاوت ملنی چاہیے، اور یہ ساری چیزیں، پھر یہ تو وہ یعنی خواہشات ہی رہ جاتی ہیں نا، بس اس سے زیادہ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. تو فرمایا کہ یہ فتنہ جو ہے نا، پھر ایک تو یہ ہو گیا کہ میلان پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا فتنہ ہم نے اس کو اور بھی بدید ایکسٹینڈ کیا تھا کہ یہ فتنہ پھر اپنے اندر اگر پیدا نہ بھی ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، یعنی اپنے اندر رغبت نہ بھی پیدا ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز جو ہے وہ عورت کے شوہر کے دل میں اگر پیدا ہو گئی کہ یہ بھائی یہ جو یعنی دیکھنے کے لیے ان کا چہرہ بھی کھلا ہے اور ماشاءاللہ میری بیوی ہیں بھی بڑی خوبصورت، ٹھیک ہے، تو جب بھی اپنے کزنز کے ساتھ ملتی ہیں تو فلانا کزن جو ہے نا وہ ذرا ان سے تھوڑا مسکرا کے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نا ان سے تھوڑا سا زیادہ بات کرتا ہے یا ان کی طرف دیکھا کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے. اب آپ کیا کریں گے اس کا؟ اب آپ اپنے شوہر کو یقین دلاتی نہیں 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 میں تو کوئی دال میں کالا نہیں ہے اور تم شکی ہو اور یہ ہو، تو وہ کہے گا میں شکی ہوں، اچھا پھر کیا ہوگا، پھر شیطان کو موقع مل جائے گا، پھر شیطان جو ہے وہ اس گھر کے اندر آگ لگائے گا، ٹھیک ہے نا. تو کیوں اس فتنے کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کریں؟ بہتر یہی نہیں ہے کہ کیا الگ 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 راج ہے، ٹھیک ہے، اور جب کبھی آپ آمنے سامنے کی ضرورت پیش آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو ہے وہ چہرے کا پردہ کر لیا جائے، بات چیت نہ کی جائے، تاکہ شوہر کی نہ تو اگر وہ شکی ہے تو اس کے شک کو شیطان ہوا دے سکے، نہ اس کے اندر ایک پازیٹو چیز جو کہ غیرت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کا غیرت جو ہے وہ اس کا تقاضا کرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں پردے کے احکام بھی اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیے تھے نا، یہ غیرت ہی کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا، ٹھیک ہے. پہلے پردے کے احکام نہیں تھے کیونکہ پچھلی شریعتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مقدمات گناہ تھے ان کو حرام نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے جو بندے ہیں وہ کس لیول پر ہیں، کیا کیا ان کی ضروریات ہیں، اور شریعت کیا چیز ہوتی ہے، شریعت جو ہوتی ہے وہ انسانوں کی ضروریات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو چیز ان کے لیے ضروری ہے وہی چیز شریعت ہے. تو جب ضرورت نہیں تھی تب اللہ تعالیٰ نے احکام نہیں نازل کیے، جب ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کر دیے. لیکن انٹرسٹنگ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام نازل کرنے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ باتیں کہلوائیں، ٹھیک ہے، کچھ باتیں کہلوائیں، اور پھر اس کے بعد احکام نازل کی. اللہ تعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے باتیں کہلوانے کے بغیر بھی احکامات نازل کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن پہلے کہلوائیں، اور وہ کہلوانے والی کیا باتیں تھیں؟ وہ باتیں غیرت. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ غیر مرد جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو دیکھے، مومنین کے ازواج کو دیکھے، ٹھیک ہے. تو غیرت کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا اور اس کے بعد پھر پردے کے احکام نازل فرمائے، ٹھیک ہے. تو مرد کے اندر جو غیرت ہوتی ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ کی بہت قدر ہوتی ہے. تو اس غیرت کو بھی جو ہے نا ہمیں خواہ مخواہ جو ہے وہ یعنی للکارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے پھر شوہر اور بیوی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے یہاں پر یہ بھی بات آپ کو بتائی تھی، یہ ریپیٹیشن بھی کر رہا ہوں تاکہ ریپیٹیشن سے فائدہ ہی انشاءاللہ ہوتا ہے ایمان والوں کو، کہ مشائخ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو عورت پردے کا خیال نہیں رکھتی ہے اس کے شوہر کے دل کے اندر سے اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو نکال لیتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے حضرت نے ایک بیان کے اندر یہ واقعہ بھی سنایا تھا کہ ایک بیوی یعنی ایک عورت نے آ کر کے ان کو اپنے احوال بتایا، بہت رو رہی، بہت پریشان کہ میرا شوہر جو ہے وہ گھر کے اندر جو کام کرنے والی نوکرانی ہے نا، جو کہ خوبصورتی تو دور کی بات بدصورتی کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہے، میرا شوہر اس کی محبت میں مبتلا ہو چکا. یقین کریں اس نے کہا کہ جو یعنی نوکرانی بھی ہے اور بدصورت ترین نوکرانی ہے، یا مجھے یاد نہیں پڑا کہ وہ بیوی نے آ کے یہ معاملات بتائے تھے یا شوہر نے آ کے یہ بات بتائی تھی، خیر لیکن یہ بات تقریباً یعنی یہ بات مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے بتایا نا تو پھر حضرت نے اس عورت کو پھر اس بیوی کو یہ نصیحت کی تھی کہ تم پردہ اسٹارٹ کرو، ٹھیک ہے. तुम जो है वो बेपर्दे की जिंदगी से तौबा करो, तब अल्लाह ताला तुम्हारे शोहर के दिल के अंदर तुम्हारी मोहब्बत को पैदा करेगा। ठीक है, और फिर हुआ भी बाद में ऐसा ही था। तो फितने के अंदर फिर ये सारी चीजें आ जाती हैं, और फितने की डेफिनेशन जो है वो फिर हमें उलमाई से लेनी चाहिए, वरना क्या होगा। जाहिर सी बात है, बहुत ही आसान समझने की बात है कि भाई घरों के अंदर हम यानी कजन्स के साथ जो है वो बड़ी दोस्तियां होती हैं, बड़े जो है वो यानी स्कूल कॉलेज के जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ बड़े अच्छे अच्छे ताल्लुकात होते हैं। ठीक है, तो यानी औरत के लिए तो उन लोगों से, उन मर्दों से पर्दा करना बड़ा मुश्किल काम है ना, कि जिनके साथ उसके बड़ा यानी अच्छा दोस्ताना गुजरा है। जब वो दीनदार नहीं हुई थी तो उसकी दोस्तियां होती थी कॉलेज के लड़कों के साथ और स्कूल के लड़कों के साथ, और इसी तरीके से खानदान के अंदर जो रिश्तेदार कजन्स होते थे या दूसरे कजन्स के कजन्स यानी उनके साथ, राइट। तो अब उन किसी इनसे पर्दा करना तो इसके अंदर तो हर्ज है ना, तो वो कहेगी कि भाई दीन के अंदर तो हर्ज नहीं होता, तो मैं अगर इनसे पर्दा करूंगी तो फिर तो बड़ा हर्ज हो जाएगा। तो फिर इसके ऊपर क्या जवाब दिया जाएगा कि भाई हज की डेफिनेशन आपसे नहीं ली जा रही है, बल्कि हज की डेफिनेशन जो है वो उलमाए कराम से ली जाएगी, और हमारा काम जो है, जो अल्लाह ताला ने हमारा हुक्म लगाया या हमारे ऊपर हुक्म लगाया है, वो ये है कि हम उलमा से पूछें और उसके ऊपर अमल करें। फस करो वसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। तो यहीं पर हम आज की क्लास खत्म कर देते हैं, इंशाल्लाह यहीं से आगे पढ़ना शुरू करेंगे कल की क्लास में। अस्सलामु अलैकुम।